आज का स्लोगन क्या था? समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। इसका अर्थ है कि हम जहां भी कार्य करते हैं, लौकिक भी, सेवा करते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, जैसे माताएं एक एक कमरे में कहीं 8 कहीं 5 रहती हैं, भाई भी रहते हैं, तो हमारी उपस्थिति या हमारा जीवन समस्या पैदा करने वाला न हो बल्कि समाधान करने वाला हो। हम जहां भी हों समस्याओं को समाधान में बदल दें, ये बाबा चाहते हैं। परिवारों में भी अब सब चिंतन करेंगे और अपने को देखेंगे। परिवारों में भी कोई एक व्यक्ति अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। क्यों? क्या होता है उसमें? ईगो बहुत होता है और मैं पनुसी में आ गया और सोचो कुछ प्रैक्टिकल बात। एक व्यक्ति बहुत बुरा बोलता है दूसरों को, तो जहां भी वो जाएगा लोग क्या करेंगे? वहां से अलग हटने लगेंगे ना, भाई बुरा बोलने से समस्या पैदा होंगी। और एक बात पे विचार करें, जो मनुष्य छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं वो भी समस्या स्वरूप होते हैं। बात बहुत छोटी होगी जिसको सहज भाव से समाप्त किया जा सके, लेकिन उसे बड़ा कर दिया, क्यों, क्या, कैसे हुआ, क्यों कहा, तो वो छोटी बात तूफान बन जाती है, समस्या बन जाती है। और समाधान स्वरूप वो मनुष्य होता है जो बहुत सरल चित्त हो। तो ये बाबा के महावाक्य हैं, तुम सरल रहेंगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, सरलता से समाप्त हो जाएंगी। तो सभी इस चीज पे ध्यान दें, हमें समाधान स्वरूप बन के रहना है। समस्या कोई भी क्रिएट कर दे, किसी ने क्यों की, क्या किया, इस के चिंतन चिंता में न जाके हम क्या करें, हमेशा समाधान का सोचना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं प्रैक्टिकल। अभी नीचे ग्रुप था 10,000 का, चने बनाए थे, सफेद होते हैं ना मोटे, जला दिए। अब जल तो गए, अब जलाने वाले बेचारे, आप समझ ही सकते हैं मनोस्थिति, डर भी रहे अब क्या होगा। 10,000 के चने कोई 10 लोगों के नहीं जिन्हें फेंक फांक दिया जाए, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? अब समाधान की आवश्यकता, टाइम भी बहुत कम था, अब 10:30 से ज्यादा बज गए थे, ऐसा तो नहीं दोबारा बना दें। तो हमने सबको, क्योंकि हमें अनुभव है जलो वो को ठीक कैसे करना, मनुष्य भी जल रहा हो उसको भी ठीक करना होता है। पहले तो घाव वाव हो जाता था, अशोक भाई को पता होगा, मेजर को जला के कुछ भर देते थे उसमें, घाव वाव ठीक हो जाता था। तो इतने चने अभी उसमें से बदबू निकले, किसी ने चला भी दिया एक बार, मैंने रोका चलाओ नहीं, एक बार चला दिया। अब उसको ठीक किया, उसमें पहले तो 5 किलो देसी घी का छौंक लगाया, बहुत अच्छा, हींग डाला, अदरक डाला, पत्ते होते नीम वाले मीठे वो डाले, जीरा अच्छी तरह, और वो इतना अच्छा बन गया कि वो खत्म ही हो गया उस दिन। वैसे तो बचता था हमेशा। अब मैं सोचता था अगर इस बात को तूफान बना दिया जाता, जिन्होंने जलाया उनको भी जली कटी सुनाई जाती, तो वो माहौल कैसा हो जाता। ये भी न समझ में आता कि अब करें क्या। माताओं को पता होना चाहिए, तो हमने उसमें इमली डलवा दी। इमली होती है ना, वो बहुत चीजों को अपने में सोख लेती है। थोड़ी मिर्ची भी बढ़ा दी ताकि विटामिन सी मिले, लोग सी सी करें और वो भूल जाएं बाकी चीजें, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हमेशा सोचना चाहिए अपने अपने टीम में कि हम चलें भी इस तरह से कि समस्या पैदा ना हो बल्कि समस्याएं समाप्त हों। बाबा की मुरलियों में कुछ दिन से एक बात बहुत आई है, आप सबने ध्यान दिए। पहले तो मैं वो कुछ चीजें याद दिला दूं आपको, फिर उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। हम सबका धंधा क्या है? सुख शांति बांटना। शब्द बाबा के बहुत सुंदर, धंधा भी कहा। ये तो हम जानते हैं, हमें सबको सुख शांति का मार्ग दिखाना है, वो अलग। लेकिन हमारा धंधा है सुख शांति बांटना। कितना अच्छा धंधा दिया बाबा ने। सैलरी कितनी हाईएस्ट, कितनी तनख्वाह मिलेगी? स्वर्ग की बादशाही। सुख शांति बांटना, कौन बांट सकेंगे? जिनके भंडारे भरपूर होंगे, सुख शांति वही बांट सकेंगे। और बहुत अच्छी और गहरी बात आई बाबा के आने के दिन से एक दिन पहले। ब्रह्मा भोजन, पवित्र भोजन, तुम्हारे घर में भी, तुम गृहस्थ में रहते हो, वो भी ब्रह्मा भोजन बन सकता है, दुख भंजन भोजन बन सकता है, यदि तुम नहीं, पहले कुछ और। सब कुछ बाबा का है, इसमें बाबा के शब्द होते हैं, अपने घर को, अपने भंडारे को बाबा का यज्ञ बना दो। यज्ञ समझो, ये मेरा नहीं, मैंने कमाया है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं काम करती हूँ, मेरा है, ये नहीं। सब कुछ बाबा का है। जो ऐसी समर्पण भाव में रहते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। क्या विचार है माताओं का? क्या सोचते हैं, हम तो ज्ञान में अकेले हैं, परिवार वाले हैं ही नहीं, सारा हमारा थोड़ा ही है घर जो हम बाबा के हवाले कर दें। बोलो, उत्तर दो। बच्चे सभी बाबा के, और बाबा ने कहा मैं तुम्हारा जो देना है वो तो तिनका है, और मैं क्या देता हूँ तुम्हें? बादशाही। और बाबा किसी का कुछ लेगा नहीं, फिर क्या कहेगा? रखो, संभालो, इसको यूज कैसे करो? श्रीमत अनुसार ट्रस्टी बनकर। इस धन से कुछ भी पाप किया तो वो गलत हो गया, क्योंकि वो धन बाबा का हो गया। बड़ी सूक्ष्म बात है, कहने से काम नहीं चलेगा, सब कुछ तेरा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है हम सबको। जो समर्पित हैं वो तो यज्ञ में ही रहते हैं, लेकिन वे समर्पणता की गुह्यता में चलें। समर्पणता बहुत गुह्य चीज है, और इतनी गुह्य है, मैं सुनाता रहा हूं यहां भी क्लास में, बाबा ने कहा जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तब संपूर्ण बन जाते हो। धन, केवल धन की बात नहीं, लोग समर्पणता की बात सुन के धन की बात सोचते हैं। बुद्धि को अर्पित करना, बुद्धि के अहम को अर्पित करना, मन की जो भी गलत चीजें हैं उनको अर्पित कर देना। बच्चे मेरे हैं, वो तेरे हैं, समर्पण भाव अपना लेना। मेरी जिम्मेदारी, मेरे बोझ, बहुत रहते हैं ना, मेरी चिंताएं, इन सब को अर्पित करना, और बाबा को अपना साथी बनाकर इस यात्रा का आनंद लेना। ये बड़ी सूक्ष्म बात है और इसकी सूक्ष्मता में, इसकी गहराई में सबको ही चलना चाहिए। और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा की मुरलियों में आती रही हैं। हम सभी उन पे ध्यान दिया करें, हमारे विचार बहुत शुद्ध होते चले। ये मुरलियों में आ रहा है ना आजकल, विचार तुम्हारे शुद्ध होते चले। समर्पणता के लिए बाबा ने एक गुह्य बात और साकार मुरली में ही कही पीछे, बाप तुम्हारी समर्पणता तब स्वीकार करता है जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। बहुत ध्यान देना है हमें, हमारे विचार भी पावन हो जाएं, संस्कार पावन हो जाएं, हमारे स्वभाव बहुत पॉजिटिव हो जाएं, व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाए। संपूर्ण पावन स्थिति में बाबा हमारी समर्पणता स्वीकार करता है। तो बाबा की मुरलियां रोज हमारे लिए अमृत हैं। सुख शांति बांटनी है हमें, सबके विघ्न भी नष्ट करने हैं हमें। मुझे एक बात याद आ रही, कुछ लोगों की शिकायत आती है, भाई हम कमरे में चार लोग रहते हैं, एक भाई व्हाट्सएप पे चलता रहता है रात को देर तक, और देर से आता है तो आते ही पहला काम करता है ट्यूबलाइट जलाना, सबको जगा देता है। उसे प्यार से भी समझाया, भाई पहले तो टाइम पे आया करो, और देर से आते भी हो तो कम से कम लाइट तो न जलाया करो। अच्छा व्हाट्सएप पे कुछ सुनना भी है, रामायण महाभारत या कुछ भी, आजकल तो कानों में लगाने वाले सबके पास है, अंदर ही अंदर सुन लो। मुश्किल से उसने स्वीकार किया और फिर चेंज किया अपने को। आखिर मुझे ही उसे कहना पड़ा, भाई दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने उसे पूछा, तुम सवेरे कितने बजे उठते हो? तो बेचारा सोचने लगा, सक पका गया, क्या बताऊं, क्योंकि मुझे बता दिया था पहले ही कि साहब सीधे नहा के नाश्ते पर ही आते हैं। तो मैंने कहा, ये व्हाट्सएप जियो, इसने सबका जीना बिगाड़ दिया है, बहुत लोग लग गए, तो इसमें सच्चा सुख नहीं। मैंने ये बात इसलिए सुनाई कि ये समस्या पैदा करने वाली बात हो गई ना। व्यक्ति बहुत अच्छा, उसमें सारे गुण हो, अब तक का उसका जीवन बहुत अच्छा बीता हो, लेकिन इन सब में उलझ जाने से इस जीवन की दिव्यता तो समाप्त हो जाती है ना। एक छोटी सी टीचर का फोन आया मुझे, छोटी आयु की बेचारी, भाई जी मेरी सेवा नहीं बढ़ती। मैंने पूछा, कितनी आयु तुम्हारी? 20 साल। और भी कोई साथ रहता है? एक कन्या और रहती है। मैंने कहा, कितना समय सेंटर पे हुआ है? 2 साल हुआ है, मुझे अलग खोल के दिया है, मेरी सेवा नहीं बढ़ती। मैंने कहा, कितने स्टूडेंट आते हैं? 3 आते हैं। तो मैंने पूछा, सवेरे कितने बजे उठती हो? तो बेचारी गोलमोल करने लगी, भाई जी उठा नहीं जाता सवेरे, यही मेरी कमजोरी है, मेरे से सवेरे नहीं उठा जाता। फिर आप ही बताया उसने, मेरे अंदर एक दूसरी बड़ी कमजोरी है, मैं व्हाट्सएप पे बहुत रहती हूँ। मैंने कहा, योग सारा दिन में? कहा नहीं, मेरा होता नहीं है। तो मैंने उसको कहा, देखो अच्छा योग करेगी, अब तुम्हें बाबा की सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को भगवान से मिलाना है, ठीक है व्हाट्सएप पे रहा करो, बस बहुत ही शौक है, चलो 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। तो टाइम पे सोएंगी, जल्दी उठेंगी, आत्माओं का आह्वान करो तो तुम्हारी सेवाएं अच्छी बढ़ेगी ना, तुम्हें भी खुशी होगी, रौनक रहेगी सेंटर में, तो मजा आएगा ना जीवन जीने का। कहा हाँ हाँ, मैं छोड़ देती हूँ ये व्हाट्सएप। तो देखो छोटी छोटी चीजें जो हमारे लिए बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन वो इस तरह से समस्याओं को बढ़ाने वाली भी बन जाती हैं। इसे आत्मा धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो हमें सुख शांति बांटनी है। अब दोनों चीजें हैं, हमें दूसरों के दुख भी हरने हैं, शांति भी बांटनी है। समय तेजी से बिगड़ता जा रहा है। विदेशी भाई बहने आते हैं, कहा धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को आजकल, उत्तर कोरिया वाला अमेरिका को, अमेरिका उसको, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं क्या कर बैठे ये दोनों ही। तो संसार का हाल बिगड़ता जाता है, मानसिक स्थिति बहुतों की बिगड़ रही है। ये बहुतों की समस्या तेज हो रही है कि हम बहुत सोच रहे हैं, निगेटिव संकल्प बहुत चल रहे हैं। मैं ये बात बार बार आपको कहता हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग नीचे शांतिवन में बहुत आते हैं, एक एक ग्रुप में, माताएं भी, बड़ी आयु के भी, छोटी आयु के भी, कि हम बहुत ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं हमें भी पता नहीं, हम क्यों सोच रहे हैं हमें पता नहीं, पर विचार लगातार तेज गति से चल रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि कई इम्प्योर विचार चलते हैं, विचार चलते हैं कुछ भी कुछ भी। एक ने कहा ये बहुत ही ध्यान देने की बात होती है कि बहुत साल पहले की कोई बात इतनी तेजी से इमर्ज हो रही है मेरे अंदर, 30 साल पहले की बात, कि मैं उसे रोक नहीं पाती और संकल्प तेजी से बहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सुख शांति बांटनी है, पहले स्वयं को सुख शांति का भंडार बनाना है। तो विशेष रूप से श्रेष्ठ संकल्पों का बल हमें जमा करना है। रोज मुरली से हमें सुंदर विचार मिलते हैं ना, ऐसा संसार में और किसी के साथ नहीं होता कि रोज सवेरे इतने सुंदर विचार मिलते हों, भगवान के द्वारा कही गई बातें सुनने को मिलती हो, वो हमारी स्मृति को श्रेष्ठ बनाते हो, हमें नशा चढ़ाते हैं रोज बैठकर। आज भी कह रहे थे ना, तुम्हारे तुम तो शिव बाबा के डायरेक्ट सम्मुख बैठे हो बच्चों, तो नशा चढ़ाते हैं। ये सब संकल्पों में बल भरने वाली बातें हैं। तो सभी मुरली पर रोज बहुत ध्यान देंगे और अपने संकल्पों को न केवल शुद्ध करेंगे लेकिन उन्हें पावरफुल बनाते चलेंगे, ताकि पहली चीज है कि दूसरों के दुखों का असर हम पे न आए। बहुत इम्पोर्टेंट, आगे चल के ये बहुत होने जा रहा है। तब बाबा की वो बात सबको बहुत ख्याल में आएगी, बच्चे न दुख दो न लो। बहुत प्रसिद्ध महावाक्य रहा है ना प्रारंभ से। तो बहुतों का ध्यान रहता है हम ऐसा कुछ न करें जो दूसरों को दुख मिले, लेकिन दूसरों का दुख ग्रहण कर लेते हैं। बहुत केस हो रहे हैं, माँ को 2 बच्चे हैं, बच्चों से कुछ गड़बड़ हो गई, माँ बहुत दुखी रहने लगी, रात को नींद ही नहीं आ रही है, दुख ग्रहण कर लिया। मैं उनको कहता हूं कि यदि तुम इस तरह दुख ग्रहण करोगी, दूसरों का दुख लोगी, तो उनके दुख कैसे दूर करोगी? वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, उन्हें अपने सुखों के भंडार से उन्हें बहुत कुछ देना है। अगर तुमने उनका दुख रिसीव कर लिया, चलो उन्होंने कोई भी गलती की, आजकल परिवारों में कुछ कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, कई तरह की तनाव वाली बातें, कष्ट देने वाली बातें आज जितनी होने लगी परिवारों में, अब से 10 साल पहले नहीं होती थी। तो हम ऐसा अपने मन को तैयार करें कि हम दूसरों का दुख ले न लें, हमारी मनोस्थिति बिगाड़ न दें, तब हम दूसरों के दुख हर सकेंगे, दूसरों को सुख शांति दे सकेंगे। ये हमें बांटनी है और सभी को इसके लिए तैयार होना है कि आने वाले समय में ये कार्य बहुत तीव्र गति से करना है, सबको ही करना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है, बाबा की एक मुरली चली थी बहुत पहले, अव्यक्त 45 साल हो गए होंगे मुझे उस मुरली के, ये सब याद रहे, तभी वो बहुत अच्छे लगे थे। तुम्हें सूक्ष्म दुख का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, तब तुम दूसरों के दुख हर सकोगे। तो लंबा काल जो दुखों से मुक्त रहते हैं वो दुखहर्ता बन जाएंगे। अब बाबा के साथ हम सबको भी ये वरदानी काम करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें एक बात और याद दिला दूं अभी की। इस टर्न से पहले टर्न में जो विदेशी थे ना, आपको याद हो मोहिनी बहन ने भोग लगाया था, अमेरिका की मोहिनी बहन ने। संदेश में तीन बातें आई थी, बहुत सुंदर हैं और अच्छे पुरुषार्थियों को उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। दो शब्द बाबा ने याद दिलाए, विजय रतन, सफलता मूर्त। इनकी कैसे प्रैक्टिस करो? विजय रतन हूं मैं माया के इस युद्ध में। माया किसी भी तरह की हो, व्यर्थ संकल्प ही चल रहे हो, हम इस स्मृति को शक्तिशाली रूप से जरा इमर्ज करें, मैं विजय रतन हूं, तुरंत माया पर विजय होने लगेगी। बाबा ने कहा, हर कर्म करने से पहले मैं सफलता मूर्त हूं, ये स्मृति में लाओ तो हर कर्म में सफल होने लगेंगे। दोनों प्रैक्टिस तो सबको करनी है। और तीसरी बात बाबा ने कही, मुझे बहुत याद रहने लगी उस दिन से, अपने वरदानी स्वरूप से सेवा शुरू करो। अब मोहिनी बहन का संदेश बहुत अच्छा होता ही है, कई बार लाई है ज्ञान सरोवर में, वरदानी स्वरूप से सेवा करो। तो ये भी हम बाबा से वरदान ले लें, मैं मास्टर दुखहर्ता हूं, सुखकर्ता हूं। तो हम अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने वाइब्रेशन से दूसरों के दुख हर सकेंगे। तो बहुत ध्यान देना है, आने वाला समय जिसको बाबा अति नाजुक समय कहते हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा दुखों के पहाड़ गिरेंगे, हमें अपने को दुखों से मुक्त रखते हुए दुखहर्ता बनना होगा। क्योंकि सबको घर जाना होगा, जो हमारे हैं उनको भी जाना होगा ना, जो हमारे हैं उनको भी अपना हिसाब किताब चुकतु करना होगा। ये तो नहीं ना वो हमारे हैं तो बाबा उनके लिए कुछ कर देगा, बाबा तो सबके लिए समान है और इस बात में साक्षी है, सबको खुद ही अपने हिसाब किताब चुकतु करने हैं। जाना भी है तो कष्ट सबको होगा, केवल जो श्रेष्ठ योगी हैं वो मुक्त रहेंगे। तो ऐसी तैयारी कर दें अभी से कि हम अपने इस वरदानी स्वरूप से सबके दुख हरने लगे। और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस यही चाहिएगी कि मान लो कोई बहुत दुखी व्यक्ति हमारे पास आता है, बहुत दुखी है, हमें उसके दुख हरने हैं, वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा प्रैक्टिकल अभी का, तो हम ये वरदान याद करके, मुझे बाबा से वरदान मिला है, मैं मास्टर दुखहर्ता हूं, उसे दृष्टि दें, वाइब्रेशंस दें, अच्छे संकल्प करें, उसका दुख ढीला होने लगे। विजन भी बना सकते हैं कि बाबा का वरदान ही हाथ मेरे सिर पर है और वे मुझे याद दिला रहे, बच्चे तुम मास्टर दुखहर्ता हो। एक जगह अभी हम गए थे, कुछ ज्यादा दिन थे, तो बहुत क्लास आने लगी, जो लोग बाबा के बच्चे भाई बहने हैं वो अपने संबंधियों को, अपने बच्चों को, कोई अपनी माँ को लाने लगा, उनका जो छोटा होल था वो फुल होने लगा बाहर तक भी। एक माता रोज आती थी, अब जो उसको ला रही थी वो मेरे पास लाई। मैंने उसे पूछा, क्यों माता जी, सुखी नहीं रहती हो? नहीं, बहुत दुख है मुझे, उसके चेहरे पर आ रहा था, बहुत दुख है मुझे। तो मैंने कहा यहाँ आया करो, ज्ञान ले लो, कोर्स दिया जाता है, कोर्स कर लो। कहा मेरे से तो होता नहीं, मेरे से तो घर से आया भी नहीं जाता, ये मुझे ले आती है उठा के जबरदस्ती। फिर मैंने तो उसको थोड़ा थोड़ा समझा के अच्छी बातें सुना के भेज दिया। उस माता से पूछा, कहा इसके परिवारों में कई घटनाएं हो गई, तो उसका इतना गहरा इफेक्ट इस पर हो गया है कि ये बेड पर है, बीमारी और कोई नहीं है इसको, लेकिन मन से इतनी दुखी है ये कि इसका पूरा जीवन जैसे दुख में हो गया, चेहरे इस पर आ रहा था उसके। तो मैं सोच रहा था देखो आत्मा दुखों में है, उसे पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, उसमें ताकत ही नहीं, यानी इतना भी नहीं, घर पास ही है सामने, पैदल चलेगी तो 2 मिनट में घर सेंटर में। लेकिन उसको जो मैंने कहा रोज अच्छा यहाँ ये बाबा का कमरा है ना, अच्छा लगा ना यहाँ, इसमें आके 5 मिनट बैठा करो, मेरे से तो आया नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति बहुत हो जाएगी संसार में। उसको देखकर मुझे लगा ये ऐसा ही तो समय नजदीक आ रहा है कि लोग हमें कहेंगे तुम हमारे लिए कुछ कर दो, योग भी तुम कर दो। जैसे एक बार बाबा ने कहा था, हंसी की बात सुना दो, अव्यक्त बाबा की है, बहुत साल पहले की, 25 साल पहले की होगी, कि कई बच्चे तो बाबा को ये कहते हैं कि बाबा हमारे लिए योग भी आप कर दो ना, हमसे तो नहीं होता लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा या नहीं भाई, थोड़ा तो कुछ करना पड़ता है ना, हिम्मत का एक कदम हम बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद मिलेगी ना, और हम कुछ भी ना करें तो बाबा की मदद कहां से मिलेगी। तो हमें मास्टर दुखहर्ता बनना है, सोच लें सभी, बनना है तो लंबा काल दुखों से मुक्त रहें, दूसरा लंबा काल से सुख का खुशी का खजाना स्वयं में भरा हो, दुखों से भी मुक्त, क्योंकि अगर दुख में रहेंगे तो वो सुखों का खजाना उसमें जाके खत्म होता जाएगा। तो कब हमें सबसे ज्यादा सुख मिलता है, रोज सवेरे, बाबा स्वयं सुख बांटता है, हमें उसे ग्रहण करना है। दूसरा सुख मिलता है मुरली से, ये 2 सुख तो बहुत बड़े हैं। तीसरा सुख, हम जितना श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे आत्मा अंदर ही अंदर सुखी रहेगी। जैसे आज भी मुरली में था, योग लगाते लगाते तुम आत्मभिमानी बन जाओगे, तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। तो आत्मभिमानी बनना माना बहुत सुखी हो जाएंगे हम। तो योग युक्त रहने से, सारा दिन अच्छी स्मृतियों में रहने से हमारा आंतरिक सुख बढ़ता जाएगा। सुख देंगे तो सुख बहुत बढ़ेगा। ये 4 बातों के द्वारा हम अपने सुखों के खजानों को बढ़ाते चलें तो वो हमसे वाइब्रेट होगा, वो फैलेगा, हमसे वाइब्रेशंस फैलेंगे, और ऐसा समय आएगा कि जहां हम होंगे वहां के दुख लोगों के समाप्त होने लगेंगे, हमारे वाइब्रेशंस का ये इफेक्ट होगा। अब इम्पोर्टेंट बात है, हमें दुखों से मुक्त रहना है। सोचें क्या क्या संकल्प रखें अपने मन में जो दुखों से मुक्त रहे। कोई हमें कुछ बुरा बोल देता है, दुख होने लगता है। माताओं ने सेवा बहुत अच्छी की हो, बहुत मेहनत की हो, किसी ने कह दिया माताजी सेवा ठीक नहीं करती, तो क्या होगा, सारी खुशी और सारा दुख चला जाता। ये हो जाता है कभी कभी, माताएं रोती हुई मेरे पास आती हैं, भाई जी हमने इतनी अच्छी सेवा की, देखो ये कहता है ये माता ठीक सेवा नहीं करती, अगली बार ना आना, कहीं हमारी दीदी को ना बता देना। मैंने कहा नहीं तुम निश्चिंत रहो, तुमने भी अच्छी सेवा की और उसको उसको मैं समझा दिया, ये नहीं बोला करते, भले कोई हल्की सेवा भी करे लेकिन हमें तो उमंग दिलाना होता है ना, बहुत अच्छी करते और अच्छी करो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं, घर में बच्चों ने कुछ ऐसा वैसा व्यवहार कर दिया, कामनाएं बहुत रहती है ना अपनों से, दुख बढ़ने लगा, कोई शारीरिक बीमारी आ गई, बीमारी होना अलग बात लेकिन मन को दुखी कर लिया वो अलग बात। तो हम कुछ अपने जीवन के सिद्धांत बनाकर चले, कुछ संकल्प साथ लेकर चले कि हमें दुखी नहीं होना है। सोच लो क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें ड्रामा का गुह्य ज्ञान हमें सबसे ज्यादा मदद करेगा, करेगा या नहीं करेगा, ड्रामा का गुह्य ज्ञान। विशेष रूप से कई लोग जो पास्ट की बातों से दुखी रहते हैं, बाबा मिला बहुत अच्छा जीवन हो गया, 2 साल से बहुत सुख मिल गया, अचानक याद आ गई पिछली बातें, हमने क्या क्या कर लिया ज्ञान काल में और दुख होने लगा, क्यों किया हमने ये, पहले से हमें ज्ञान मिल जाता तो कितना अच्छा होता, अब पहले से क्यों मिल जाता भाई, उसका तो एक टाइम है ना, राइट टाइम है। तो इस तरह सोच सोच के भी मनुष्य दुखी होता रहता है। दुखों के बहुत सारे कारण हैं, साकार में बाबा थे ना, साकार वाले अशोक भाई तो आ गए थे, थोड़ा सुन तो ली होंगे वो बातें, डॉक्टर बैठे हैं। बाबा ने 108 दुखों की लिस्ट बनवाई थी, 108 लिस्ट बनाओ, कई दिन मुरली चलाई, लिस्ट बनाओ 108 दुखों की। दूसरे के सुखों को देखकर भी हम दुखी हो सकते हैं, दूसरे की महिमा हो रही हम अपना दुख बढ़ा सकते हैं, कई बातें मनुष्य के सामने होती हैं। लेकिन साक्षी भाव अपनाना, सरल चित्त होकर रहना, हर बात को छोटी समझना, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, एक आत्मा बहुत उमंग उत्साह में थी, किसी ने कुछ थोड़े से शब्द बोल दिए, सारा दिन उदासी आ गई, देखा मैं इतनी अच्छी और ये लोग क्या क्या बोलते हैं, तो बोलने वाले तो बोलेंगे या नहीं, बोलना चाहिए या नहीं, इसका उत्तर भाई लोग देंगे, बोलना भी चाहिए ना, ताकि हमारी परीक्षा भी तो हो जाए थोड़ी सी, हम कितने पानी में हैं, या ऐसे ही अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, भाई गलती होगी तब तो बोलेंगे ही, पर गलती न हुई तो भी बोल दें, तो वो चैलेंज तो वही है ना, हमारी स्थिति की परख तो उसी में होगी कि हमने गलती नहीं की। चलो जब मनुष्य से गलती होती है तब 4 लोग बोलते हैं तो मनुष्य को ये भी रहता है भाई मैंने गलती की तो ये तो बोलेंगे ही ना, परंतु गलती हुई नहीं और बोला जा रहा है, इसमें भी स्वयं को बहुत हल्का रखने की जरूरत है। और इसमें क्या याद रखना चाहिए, अपनी सत्यता में विश्वास, ये बहुत होता रहता है संगठनों में कि हमने कोई गलती की नहीं और 10 लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं इसने ये किया इसने ये किया, तो स्थिति बिगाड़ लेते हैं। लेकिन अगर अपने को संभालते हुए, अपने सत्य में विश्वास रखते हुए और बाबा के महावाक्यों को याद रखते हुए कि विजय सत्य की ही होगी भले देर लग जाए, सत्य का सूर्य चमकेगा अवश्य, काले बादल कितने भी आ गए हों बादल हटेंगे, ये बाबा के महावाक्य हैं। अगर इनको याद रखते हुए हम थोड़ा सा अपनी स्थिति को संभालें तो सत्य प्रकट हो जाता है और हमें दुख भी नहीं होगा। मान लो हम सुखी भी बहुत हों लेकिन हमारे मन के विचार बहुत ज्यादा चलते हों तो हमारी आंतरिक शक्ति यानी सुख एक गुण भी है धारणा, लेकिन इसमें बहुत शक्ति भी तो है, जैसे शांति एक बहुत अच्छी धारणा है लेकिन इसमें बहुत शक्ति भी है, उसके साथ अगर व्यर्थ चलने लगे बिना मतलब के संकल्प, तो ये शक्ति नष्ट होती रहती है और तब हमारी शांति हमारे लिए तो रह जाएगी लेकिन दूसरों के लिए नहीं बचेगी। इसलिए हमें सुख शांति बांटनी है। बांटेंगी माताएं? कौन कौन बांटेगी? मैं भी दर्शन करूं जरा देवियों के। वाह, बच्चों को बांटेंगे? किसको? सबको बांटेंगे। पहले अपने घर में बांट दें और फिर बाहर बांटने लगेंगे, क्योंकि बहुत भिखारी आएंगे शांति के, सुखों की दीन आत्माएं बिल्कुल हमारे सामने। मेरे सामने तो अभी भी आती है, मैंने सुना है ना, आती रहती हैं रोज एक दो, तो जो यही कहती है, ये तो बहुत कह के जाते हैं, भाई जी हमसे तो योग नहीं लगता, हमारे लिए आप योग लगा देना। मैंने कहा जरूर मैं आपके लिए योग लगाऊंगा, मुझे तो आपने काम दे दिया इतना अच्छा, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो आत्माएं तो बहुत आएंगी, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है, ये सब संसार की परिस्थितियां, बिगड़ता हुआ खेल, इसको हम सहज भाव से देखें, साक्षी भाव से देखें। विनाश तो होना ही है ना। अब कोई भी उसका निमित्त बनेगा, कोई भी उसका कारण बनेगा। हम यदि यही सोचते रहेंगे ये क्या कर रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं, तो हम डिस्टर्ब रहेंगे, हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो होने जा रहा है उसको जानते हुए हम साक्षी भाव भी धारण करें। विनाश के अतिरिक्त बाबा ने और बहुत सारी बातें जो कह दी हैं, उन पे भी हम ध्यान दें, उन्हें स्वीकार कर लें। जैसे बाबा ने कहा, संसार, सारा संसार विघ्नों की आग में जलने लगेगा, तुम्हें अपने वरदानी स्वरूप से सबके विघ्न हरने होंगे। दुखों के संसार में पहाड़ गिरने लगेंगे, तुम्हें सबके दुख हरने होंगे। बहुत सुंदर बात जो मैं याद दिलाता रहता हूँ, साकार मुरली की पीछे अभी आई थी, लेकिन क्योंकि शब्द इंग्लिश का था तो बहुत सारे भाई बहने जो इंग्लिश नहीं जानते वो उसको समझ नहीं पाए। पढ़ने वालों का काम होता है जरा क्लियर करना। इस धरती पर पवित्रता का रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति, यानी सब पवित्र बनना चाहेंगे। देखो भगवान उवाच, 5-4 मास पहले आई होगी ये बात। तो ऐसा समय आ जाएगा जब सबको घर जाना होगा, तो सबके मूल पवित्र संस्कार जागृत हो जाएंगे, पवित्र बनने की सब इच्छा करने लगेंगे। इसमें मुख्य काम करेगी हम सब ब्राह्मण आत्माओं की पवित्रता। तो हमारी पवित्रता जैसे जैसे श्रेष्ठ होती जाएगी, ये पवित्रता की क्रांति इस धरती पर पैदा होती ही जाएगी। तो ये सब चीजें होने जा रही हैं, बढ़ता जा रहा है। देखो बाबा का कार्य भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, सरकार भी ऐसा ऐसा काम कर रही है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाए। सब कोशिश करेंगे और ब्राह्मणों की बाबा की जय जयकार होगी। तो हम फिर से याद दिला दूं आपको, माया के युद्ध में मैं विजयी रतन हूं, हर कर्म से पहले सफलता मूर्त हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अपने वरदानी स्वरूप से। इसका अर्थ है कि बाबा से हमें कोई न कोई वरदान तो मिला ही है ना, उसे पहचान भी लें, उसे स्वीकार भी कर लें और उस स्वरूप की स्मृति से सेवा प्रारंभ करें, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे और सेवा का विस्तार भी बहुत होगा। बाकी दादी गुलजार के लिए तो आपने सुना ही होगा, सेंटर में आ गई हैं, हॉस्पिटल से इम्प्रूवमेंट हो गया है तबीयत में बहुत ज्यादा। कई लोग मुझे हंसी में कह रहे थे 4 दिन पहले क्यों नहीं आ गई हॉस्पिटल से बाहर। कहा भाई ये तो बाबा के हाथ में है ना, अब ये न तो एक्चुअली डॉक्टरों के हाथ में, तो प्रभु की लीला चल रही है। उस दिन प्रभु लीला पे मुड़ ली थी ना बहुत अच्छी, तो प्रभु लीला चल रही है, वो क्या चाहता है वो तो हम देखते चलेंगे साक्षी होके। तो सब कुछ बहुत अच्छा और हमें सुख शांति बांटनी है। ओम शांति।